स्वागत। आज हम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य के एक बहुत महत्वपूर्ण उद्बोधन पर गहन चर्चा करने वाले हैं, जिसका शीर्षक है अध्यात्म एक प्रकार का समर। हमारे पास स्रोत है पूज्य गुरुदेव का ये उद्बोधन, जो उन्होंने सामान्य भारतीय नागरिकों को संबोधित किया था। और आज हमारा मिशन है इस विचार की तह तक जाना कि भाई अध्यात्म कोई शांति से बैठ जाना नहीं है, बल्कि एक सक्रिय संघर्ष है। तो चलिए इसे खोलते हैं। पूज्य गुरुदेव का मुख्य तर्क तो यही है कि अध्यात्म असल में एक भीतरी लड़ाई है।
बिल्कुल। और यहाँ आप देखें तो दिलचस्प बात यह है कि पूज्य गुरुदेव स्वामी नित्यानंद जी की एक पुस्तक है साधना समर, उसका उल्लेख करते हैं। वो साधना की तुलना महाभारत या लंकाकांड जैसे बड़े युद्धों से करते हैं, पर ये युद्ध बाहर नहीं है, ये अपनी ही कमजोरियों, अपनी इंद्रियों और मन की जो गलत आदतें हैं उनके विरुद्ध है।
अच्छा, तो ये हुआ कि बाहर तो सबके साथ नरमी रखो पर अपने आप पर सख्ती। जैसे गुरुदेव कहते हैं अपनी कमजोरियों पर एक जल्लाद की तरह पेश आओ, ये थोड़ा सा आजकल जैसे हम सेल्फ कम्पैशन की बात करते हैं उससे अलग लगता है ना?
हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाया आपने। गुरुदेव का कहना है कि बाहरी व्यवहार में क्षमा, दान, उदारता वो सब ठीक है, जरूरी है, लेकिन जब बात अपने सुधार की हो, आत्म सुधार की, तो वहां स्वयं के साथ बहुत कड़ाई चाहिए। अपनी कमजोरियों के लिए कोई माफी नहीं, उन्हें जड़ से उखाड़ने का एक पक्का संकल्प चाहिए। और ये लड़ाई सिर्फ मानसिक नहीं, शारीरिक भी है। आलस्य है, बुरी आदतें हैं, सब।
और पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अध्यात्म की शुरुआत ही आत्मशोधन से होती है। उन्होंने वो कोयले वाला उदाहरण दिया है, वो कितना सटीक है कि जैसे कोयले पर राख जमी हो, उसे हटाओ तो अंदर आग दिखती है, वैसे ही आत्मा पर जो मैल जमा है उसे धोने से ही परमात्मा का अनुभव होता है।
जी बिल्कुल। और इस धुलाई के लिए, इस शुद्धि के लिए वो मंत्रों या पूजा पाठ की भूमिका को साबुन के उदाहरण से समझाते हैं। कहते हैं जैसे अलग अलग साबुन है पर काम सबका एक ही है, कपड़े का मैल हटाना, वैसे ही चाहे गायत्री मंत्र हो, राम नाम हो या कोई और पूजा हो, सबका असली लक्ष्य मन की शुद्धि है, अंदर की सफाई। कौन सा मंत्र है ये उतना जरूरी नहीं जितना उसके पीछे का भाव है, आत्म परिष्कार।
हाँ हाँ, यानी कि जो हमारे और ईश्वर के बीच एक दीवार सी है, अज्ञान की, विकारों की, उसे गिराना ही असल पूजा का मकसद है।
एकदम सही कहा आपने, ये दीवार हमारी अपनी ही बनाई हुई है, शारीरिक कमजोरियां, मानसिक उलझने, गलत इच्छाएं, आदतें, इन सब से। तो ये जो पूजा पाठ या साधना के तरीके हैं वो एक तरह से छेनी हथौड़े जैसे हैं, जिनसे इस दीवार को तोड़ना है और अपने अंदर ही जो ईश्वर बैठा है उसे अनुभव करना है। इसीलिए वो कहते हैं कि सिर्फ क्रिया प्रैक्टिस काफी नहीं, उसके पीछे का सिद्धांत, उसकी थ्योरी समझना भी उतना ही जरूरी है।
अच्छा, पूज्य गुरुदेव इस बात पर भी जोर देते हैं कि ये रास्ता अध्यात्म का मार्ग कोई आसान या सस्ता नहीं है। जैसे दुनिया में कुछ भी अच्छा पाना हो, चाहे अच्छा जीवन बनाना हो या धन कमाना हो, मेहनत तो लगती है, संघर्ष करना पड़ता है।
वैसे ही आत्म विकास के लिए भी कीमत चुकानी पड़ती है।
हाँ, उनका तर्क बड़ा सीधा और स्पष्ट है, जो चीज जितनी कीमती होगी उसकी उतनी ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और आत्मिक शांति वो तो सांसारिक सुखों से कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा मूल्यवान है। तो जाहिर है उसके लिए ज्यादा परिश्रम, ज्यादा कठिनाई सहनी पड़ेगी। अगर हम सस्ते या मुफ्त के रास्ते ढूंढ रहे हैं तो शायद हम उस लक्ष्य की कीमत ही नहीं समझ रहे हैं।
ऊंचा उठना है तो
हाँ, कीमत चुकाने को तैयार रहना होगा।
गुरुदेव ने आत्मशोधन के कुछ व्यवहारिक तरीके भी बताए हैं, जैसे वो पंचकर्म है, पवित्रीकरण, आचमन, शिखाबंधन, प्राणायाम और न्यास।
इनका उद्देश्य इंद्रियों को साधना है ना? जैसे आचमन में जल ग्रहण करके शुद्धि का भाव करते हैं।
बिल्कुल। और इसमें भी विशेष रूप से जिह्वा यानी जीभ के शोधन का उदाहरण बहुत गहरा है। वो कहते हैं जीभ का शोधन सिर्फ पानी से कुल्ला करना नहीं है, इसके दो स्तर हैं। पहला है आहार शुद्धि, सिर्फ ईमानदारी और मेहनत की कमाई हुई रोटी खाना, हराम की कमाई, जैसे बिना मेहनत मिली कोई संपत्ति हो, जुआ, लॉटरी या गलत तरीके से कमाया पैसा, वो नहीं लेना। और दूसरा स्तर जो शायद उतना ही या उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है वाणी शुद्धि, कड़वे वचन, किसी की बुराई करना, अपमान करना, झूठ बोलना या ऐसी बात कहना जिससे दूसरे का हौसला गिरे, इन सबसे बचना, हमेशा मीठी, सच्ची और हिम्मत बढ़ाने वाली बात कहना। उन्होंने वो कर्ण और शल्य का उदाहरण दिया है ना, कि कैसे शल्य की नकारात्मक बातों ने कर्ण का मनोबल ही तोड़ दिया था।
हाँ बिल्कुल। और इसी तरह आंखों की शोधन की बात भी है कि हर नारी में माँ, बहन, बेटी का रूप देखो, केवल वासना की दृष्टि से नहीं। इसके लिए वो दिव्य चक्षु विकसित करने की बात करते हैं।
सार यही है, आप देखें तो, कि पूजा उपासना के जो बाहरी कर्मकांड है ना, वो असल में अंदर चलने वाली इस आत्मसंशोधन की प्रक्रिया के सिर्फ संकेत हैं, प्रतीक मात्र हैं। असली काम तो खुद को अंदर से बदलना है। गुरुदेव कहते हैं, पहले खुद देवता बनो, तब देवता की पूजा सार्थक होगी। देवता बनने के बाद ही देवता की पूजा का अधिकार मिलता है।
तो कुल मिलाकर पूज्य गुरुदेव के इस उद्बोधन का निचोड़ हम ये कह सकते हैं कि अध्यात्म कोई भागने का रास्ता नहीं है, बल्कि अपने ही अंदर जो बुराइयां हैं, कमजोरियां हैं, उनके खिलाफ लड़ा जाने वाला एक महासंग्राम है। और इसकी शुरुआत होती है आत्मशोधन से, जिसके लिए कठोर अनुशासन और लगातार कोशिश चाहिए।
जी हाँ, और ये आत्मशोधन सिर्फ पूजा पाठ या मेडिटेशन तक ही नहीं रुकता, ये हमारे खाने पीने, हमारे बोलने, हमारे देखने, हमारी हर इंद्रिय के सही इस्तेमाल तक फैला हुआ है। जैसा कहा, देवता बनकर ही देवता की पूजा संभव है।
तो आज की इस चर्चा के बाद शायद हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात ये हो सकती है कि अपने रोजमर्रा के जीवन में वो कौन सी एक अंदर की लड़ाई है जिसे वो आज से लड़ना शुरू कर सकते हैं। ऐसी कौन सी एक इंद्रिय है या कोई आदत है जिसके शोधन पर वो सबसे पहले ध्यान देना चाहेंगे। एक छोटा सा संकल्प शायद।